नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। यत ते गतीनां तृष्णीणां ईशितुः परमं पदं नर्वाचीनो विसर्गस्य धात वेदी तुमर्हति। यद ते गतीनां तृष्णीणां ईशितुः परमं पदं नर्वाचीनो विसर्गस्य धात वेदी तुमर्हति। यद ते गतीनां तृष्णीणां ईशितुः परमं पदं नर्वाचीनो विसर्गस्य धात वेदी तुमर्हति। हरे कृष्ण। माता जी बोलना चाहे बोले। नहीं बोलना है यात जो ते तुम्हारी गति नाम त्रिश्रीणाम तीन प्रकार की गति स्वर्गलोक मर्तलोक और नरकलोक ईशितो नियामक परमम पदम परम धाम वैकुंठ लोक न नहीं अर्वाचीन बाद में आने वाला पुरुष विसर्गस्य सृष्टि धातः हे परम नियामक वेदितुम जानने हेतु अर्हति सक्षम है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे परम नियामक आप तीनों गंतव्यों स्वर्ग लोक में पहुंचना मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करना तथा नरक में यातनाएं को बस में रखने वाले हैं फिर भी आपका परम धाम वैकुंठ लोक है क्योंकि आपके द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद हम प्रकट किए गए हैं अतः हम आपके कार्यकलापों को समझने में असमर्थ हैं अतः हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए नमस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तात्पर्य सामान्यतया अनुभवहीन व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह भगवान से क्या मांगे। इसी सृष्टि में प्रत्येक वस्तु है इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते समय कौन सा वर मांगा जाए यह समझ में नहीं आता। बहुत से लोग स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे वैकुंठ लोक के विषय में कुछ नहीं जानते। श्री माध्वाचार्य ने निम्न श्लोक उद्धृत किया है। देवलोकात् पितृलोकात् निरयाश्चापि जत्परम त्रिशिभ्य परमं स्थानम वैष्णवम विदुषाम गति। कई प्रकार के लोग हैं यथा देवलोक पितृलोक और निरय नरक। जब मनुष्य विभिन्न लोकों को पार करके वैकुंठ लोक पहुंचता है तो उसे वैष्णव का परम आवास प्राप्त होता है। वैष्णव को अन्य लोकों से कोई वास्ता नहीं। जय श्रील प्रभुपाद। तो आप लोग क्रमशः इस श्लोक को के पहले सुनते आ रहे हैं। यह प्रसंग श्रीमद् भागवतम के छठवें स्कंद नौवें अध्याय का है। इसमें वृत्रासुर से आतंकित होकर देवता लोग श्री भगवान के शरण में गए तो श्री भगवान के प्रति बड़े कातर भाव में प्रार्थना किए स्तुति किए। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री भगवान उनके सामने प्रकट हुए। जैसा कि आप सुन चुके हैं श्री भगवान अपने 16 परिकरों के साथ उपस्थित हैं। बड़ा सुंदर रूप है। अपने सुंदर स्वरूप के साथ भगवान पहचाने जाते हैं। जैसा कि आप इसके पहले परसों सुन रहे थे कि भगवान और परिकरों में सौंदर्य की दृष्टि में कोई खास अंतर नहीं दिखता है। जैसा श्री भगवान दिखते हैं वैसा ही उनके परिकर भी दिखते हैं। वैसा ही श्यामला वर्ण वैसा ही पीताम्बर धारण करते हैं वैसे ही उनको चार भुजाएं हैं चतुर्भुज। सब ड्रेस सब कुछ हो बहु भगवान जैसा पहनते हैं। केवल दो चिन्ह है जो देवताओं जो परिकरों से भगवान को अंतर स्पष्ट करता है वो है भगवान के वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुम मणि। वह स्पेशल मणि है, वैसा दूसरा पीस नहीं बनाया जा सकता। वो समुद्र मंथन से निकला, सभी लोग हम कर रहे थे, हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए। तो देवता लोग चाहते थे, हम भगवान पहले समझा दिए थे कि आप अन्य वस्तुओं में रिजिड मत होइएगा, अमृत आपका लक्ष्य है, असुर लोग जो लेना चाहे लेने दीजिएगा। तो भगवान बिल्कुल इन्वॉल्व थे समुद्र मंथन में। तो जो देव असुर लोग रिजेक्ट कर देते वो कहते ठीक है आप ले लीजिए। जैसे पहले बार विष निकला तो किसी को नहीं चाहिए था, तो सब लोग परेशान हो गए। तो उस विषम परिस्थिति में भगवान शिव लिए। फिर जब वृक्ष निकला तो फिर असुरों का ये पेड़ क्या होगा, कि असुरों को पेड़ नहीं चाहिए। वो वृंदावन का भी पेड़ काटकर बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रेक्टर बाहर से आकर वहां के वृक्षों को नष्ट कर रहे हैं। न उनको वृक्ष चाहिए न गाय चाहिए, बारी दोनों समय असुरों का आया। तो भगवान कहे कि अच्छा ठीक है आप लोग ले लीजिए, एक कल्प वृक्ष था। तो इसी प्रकार फिर उनको ऐरावत निकला। इसके बाद तो कहे कि आप तो अपना बारी खो चुके हैं, भगवान बड़ी बुद्धिमानी से बंटवारा कर रहे थे। तो एक काम कीजिए कि ये देवताओं को दे दीजिए। ठीक है, तब घोड़ा निकला तो असुर लोग लिए। इसी प्रकार बांटते हुए फिर असुरों के बारी में गाय आ गई कामधेनु। तो फिर नाग महोत्सव ने गाय क्या होगी, असुरों को गाय से क्या मतलब है, उनको दूध नहीं उनको तो मांस चाहिए। तो कहे ठीक है आप लोग रख। तब कहे कि ठीक है ना आपको ना इनको, ये ऋषियों को दे दिया जाए, ऋषियों को गाय देना चाहिए। आगे गाय को ही ऋषियों को दिया गया। तो गाय ऋषि लोग लिए। तो फिर बारी बारी से जो आता ये लेंगे वो लेंगे वो लेंगे। तो भगवान कहे हम फोकट में लगे हैं, कौस्तुम मणि जब निकला तो सब लोग हम कर रहे हैं, कम से एक माला तो हमको दे दीजिए एक मणि। तो भगवान कौस्तुम मणि निकले लिए, कहे ठीक है दोनों पक्षकार ठीक है, इतना पदार्थ निकल रहा है दोनों पक्ष ले रहा है, तो भगवान एक चीज लिए बस, और सबसे कीमती चीज। और इसके बाद लक्ष्मी जी निकली तो सब लोग चाहते थे, तो भगवान का झगड़ा की क्या जरूरत है, इसी पर छोड़ दिया जाए किसको चाहती है। इसको तो ग्रुप में तो नहीं लिया जा सकता, किसी एक व्यक्ति को ही मिलना है। अगर असुर पूरे समाज को दिया जाए तब भी डिस्टर्ब, देवताओं को दिया जाए, एक व्यक्ति के पास रहेगी ना, इसी को छोड़ देते हैं इसी के जिम्मे। तो लक्ष्मी अंततः उन्हीं को स्वीकार कर लिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज अमृत समुद्र मंथन में निकला वो भगवान लिए, लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि। तो उसी समय भगवान लक्ष्मी को बहुत आदर दिए, क्योंकि सबको त्याग कर भगवान को स्वीकार की तो अपने वक्षस्थल पर स्थान दिए। तो वही श्री वत्स है, लक्ष्मी निवास करती हैं। तो यह किसी के शरीर में चिन्ह नहीं है। बाएं तरफ स्वर्ण रुमावली के रूप में लक्ष्मी का स्थान दिखता है। तो इस प्रकार और श्री भृगु जी जब पाद प्रहार किए वो भी बाएं भाग में एक जगह ही, जिसको भगवान कहे कि ठीक है चलो आपके स्थान को, आपके चरण चिन्ह को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, यह लक्ष्मी का निवास स्थान रहेगा। भागवत में भगवान कहते हैं इसी पर लक्ष्मी निवास करती पहले से। तो इस प्रकार यह भगवान का स्पेशल स्पॉट है श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि, ये दो के द्वारा भगवान पहचाने जाते हैं। तो परिकरों के अंदर ये नहीं था। तो इसके पहले कहा गया है कि इनको देख करके भगवान में और इनमें अंतर समझना बड़ा मुश्किल था। आत्मतुल्यी षोडश भी, सोलहों भगवान के जैसे थे, लेकिन बिना श्री वत्स कौस्तुभ केवल अंतर था कि उनको श्री वत्स और कौस्तुभ नहीं था, बाकी सब भगवान जैसे। तो भगवान को प्राप्त करके, अब प्रकट प्राप्त करके देवता लोग उनके चरणों में नमस्कार किए। तो श्री देवा उचहु, नमस्ते यज्ञ विज्ञाय वैसे उतते नमः, नमस्ते हस्त चक्राय नमः सुपुरुहूतये। बड़ा आश्वासन मिलता है भगवान को देखकर। कहते हैं हे यज्ञ वीरजाय, हे समस्त जगों के वीर्य को देने वाले। वीर्य माने फल, हमारे शरीर के भोजन का वास्तविक फल है, रिजल्ट है शरीर में कितना वीर्य है, शक्ति है। तो उसी प्रकार समस्त यज्ञों के वीर्य श्री भगवान है, रिजल्ट वास्तविक। तो हे समस्त यज्ञों के फलदाता, एकमात्र फलदाता, हम आपको नमस्कार करते हैं, नमस्ते। तो नमस्कार करके दंडवत प्रणाम करते हैं और साथ में बोलते हैं नमस्ते, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। वैसे उतते नमः, और इसके साथ कहते हैं कि आप सारे जग के फल को अंत करने वाले भी हैं। जितने फल हैं, जो कुछ भी प्राकृत जगत में प्राप्त होता है, वयसे, वय कहते हैं आयु को, काल को, काल का एक दूसरा नाम है वय। तो वैसे उतते नमः, जितने जो भी चीज प्राप्त किया जाता है वो एक दिन समाप्त हो जाता है इस प्राकृत जगत में। आप काल के रूप में नष्ट करने वाले भी हैं, सारे कर्मों के फलदाता भी हैं और एक दिन उसको नष्ट करने वाले भी हैं। नमस्ते हस्त चक्राय, बड़ा आश्वासन है। सब चीज कहने के बाद तीसरा वाक्य कहकर उनको एक संतोष होता है, हे नाथ, हे हाथ में चक्र लेने वाले, आपको नमस्कार है, भरोसा है, आप चाहें तो इस चक्र से वृत्रासुर को मार सकते हैं। हम लोग परेशान हैं, हथियार लेकर भगवान आए हैं, तो उन लोगों को भरोसा है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे, इस चक्र का उपयोग कर सकते हैं। तब इसको जरूर याद दिलाते हैं, हे चक्र धारण करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। चक्र का कोई प्रतिवाद नहीं है, कोई उसकी बदला नहीं है, हथियार सबसे बढ़कर है सुदर्शन चक्र। तो हे सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, नमस्ते ही अस्त चक्राय, स्पेशल ही कहकर कहते हैं कि निश्चित रूप से हम इस रूप को बहुत आदर करते हैं। चक्र धारण करने वाले प्रभु को स्पेशल प्रणाम है, ही एकदम निश्चित के अर्थ में है, निश्चित रूप से। हस्त चक्राय नमस्ते पुरुहूत है, पुरुहूत का अर्थ है जिनके बहुत लीला है, बहुत नाम है। उरुक्रम और पुरुहूत दोनों एक अर्थ में है, जिनका क्रम चलता रहता है, लीलाओं का कभी तांता टूटता नहीं, अनंत अनंत लीलाएं हैं, अनंत अनंत उनके गुण है, अनंत अनंत उनके रूप है, अनंत उनके नाम है। तो ऐसे पुरुहूत अनंत लीला विशिष्ट श्री भगवान, अनंत नाम वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। जैसा भगवान काम करते हैं वैसा नाम प्राप्त हो जाता है। भगवान गिरिराज उठा लिए, गोवर्धनधारी, गिरवरधारी प्रसिद्ध हो गए। एक रामानंदी महात्मा कथा कर रहे थे, तो कह रहे थे, देखो बड़े लोग कुछ करते हैं तो उनका बहुत नाम होता है, कुछ भी कर देते हैं। एक जगह पहाड़ लेकर खड़ा हुए तो गिरवरधारी हो गए, और हनुमान जी पहाड़ लेकर आकाश में दौड़ गए, कोई गिरवरधारी कहता नहीं। देखो उनसे ज्यादा काम किए ना, वो एक जगह खड़ा थे, और हनुमान जी पर्वत लेकर के पहुंच गए लंका, धौलागिर को, पहाड़ ही लिए थे, वो भी पहाड़ था ना, लेकिन कोई आज तक उनको गिरवरधारी नहीं कहता, लेकिन इनका नाम गिरवरधारी फेमस है। उसी प्रकार बलि महाराज भी कहते हैं, जब बांध कर भगवान डांटने लगे, कहने लगे, झूठा धूर्त, ब्राह्मण को धोखा दिया, तुम्हारे पास जब नहीं था तो क्यों वंश बांध रहा था, लोका नाम एक मिश्रम बेशरम कहीं का, खूब डांट रहे थे। तो बलि महाराज कहते हैं, हे उत्तम श्लोक, चाहे मैं कुछ भी करूं, महिमा तो आपकी ही गाई जाएगी, आप कुछ भी किए हैं उस रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आप बामन बनकर आए, छोटा पैर दिखाकर, तीन ढक चाहिए, सारा जग जाहिर है कि वही आप बड़ा पैर बढ़ाकर दो डेग में नाप लिए, लेकिन आपकी कोई जस कम होने वाला नहीं है। आप उत्तम श्लोकों में आपका जस गाया जाएगा। मैं सब कुछ देकर भी बांधा गया अपराधी हूं, कोई बात नहीं, आप अपना तीसरा डेग मेरे सिर पर रख लीजिए। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, व्यंग करते हैं कि उत्तम श्लोक कहकर बलि महाराज व्यंग कर रहे हैं कि आए थे तीन डेग लेने के लिए ना, छह डेग ले लीजिए, क्योंकि धन से धनवान का कीमत दूना होता है। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अगर हमारी संपूर्ण प्रॉपर्टी दो डेग में है तो उसके दूना धनवान बलि चार डेग के बराबर है। तो दो डेग में तो पूरा प्रॉपर्टी ले लिए, तीसरा मेरे सिर पर रखकर मुझको ले लीजिए चार डेग, और आए थे तीन डेग लेने, छह डेग ले लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आपकी महिमा तो गाई ही जाएगी, चाहे भिखमंगा बनकर आ जाए चाहे सुअर बनकर आ जाए, महिमा तो आपकी ही रहेगी। तो हम देकर भी बांधे गए, आप झूठ बोलकर भी यशस्वी रहेंगे। आप दंभ कपट करके कपट रूप में आए हैं, फिर भी आपका जस गाया जाएगा। तो ये है भगवान नमस्ते पुरहूते, इनकी लीला इनकी महिमा गाई जाती है। तो इस आशा के साथ प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार करते हैं, उनके जस को गाते हैं, स्तुति करते हैं। यदते गति नाम तृष्णी नाम ईशतु परमम पदम नर्वाचीनो विसर्गस्य धात वेदी तुमरहति। अरे कि हे प्रभु, आप तीनों गतियों को कंट्रोलर हैं। चाहे व्यक्ति अपने कर्तव्य से नरक चला जाए, चाहे कुछ पुण्य करके स्वर्ग चला जाए, और चाहे बीच में इस मर्त लोक में रहे मध्यस्थ, जैसा कोई कर्म करता है उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। लेकिन ये तीनों गति आपके हाथ में है। ईशतु, आप इनके ईश हैं। ईशतु या तृष्णिनाम, गति नाम तृष्णिनाम का और परमम पदम, दोनों के बीच में है ईशतु, इसलिए कॉमन है, दीप देहली न्याय की तरह। श्लोक में ईशतु शब्द का प्रयोग ऐसे किया गया है कि कह रहे हैं कि तृष्णिनाम गति नाम तृष्णिनाम, मतलब तीनों गतियां नरक स्वर्ग और मध्य पृथ्वी मर्त लोक, ये तीनों गतियों के ईशितु आप ईश्वर हैं, नियामक हैं, कंट्रोलर हैं। और प्लस परमम पदम, इसके अतिरिक्त जो परम पद वैकुंठ लोक है अप्राकृत जगत, उसके भी आप नियामक हैं। अगर केवल इतना कह देते कि गति नाम तृष्णाम तो यह अधूरा रह जाता है। आप तीनों गतियों के अधीश्वर हैं, ने तीन गति, ऊपर के लोक, नीचे के लोक और बीच के लोक, त्रिलोकी के स्वामी हैं। तो ये प्राकृत जगत का वर्णन हुआ, या तीन गति नाम नरक स्वर्ग और ये मर्त लोक। मर्त लोक में जो सुख सुविधा है उसके भी नियामक हैं, नरक में जो यातनाएं दी जाती हैं उसके भी नियामक है। आप चाहे तो एक सेकंड में क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, जमराज कुछ नहीं करेगा। या स्वर्ग जब चाहे एक मक्षर को भी इंद्र बना सकते हैं, किसी योग्यता की जरूरत नहीं, आपके इच्छा से ही कोई कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो ये तो हुआ तीन गति, लेकिन इससे अतिरिक्त भी एक स्थान है परमम पदम। परमम पदम माने वैकुंठ लोक। तो आप ईशतु परमम पदम, आप वैकुंठ लोक के भी अधीश्वर हैं। और न अर्वाचीन विसर्गस्य, इस विसर्ग के पहले, सृष्टि के पहले सर्ग और विसर्ग भागवत के टॉपिक है। अतः सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मूतय मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। ये दस टॉपिक है भागवत के, उसमें सर्ग है। सर्ग का मतलब भगवत सृष्टि, भगवान के द्वारा जो सृष्टि की जाती है। और विसर्ग का मतलब ब्रह्मा से लेकर अब तक जो सृष्टि का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मा पेड़ पौधा बना दिए तो हम लोग फर्नीचर बनाकर तरह तरह के रखते हैं, कितना। ब्रह्मा पृथ्वी बना दिए तो हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं उस पृथ्वी के मटेरियल लेकर। तो यह भी विसर्ग के अंदर है। तो विसर्ग है ब्रह्मा के बाद की सृष्टि। ब्रह्मा से लेकर बाद नहीं ब्रह्मा से लेकर अब तक का, तो कहते हैं अर्वाचीन, अर्वाचीन बाद में आने वाला पुरुष भविष्य में, न अर्वाचीन विसर्गस्य, इस विसर्ग के पहले हम लोग नहीं थे, कोई देवता नहीं था, कोई ईश्वर नहीं था, यह बात समझना बहुत जरूरी है। हर स्तुतियों में सब बातें आती हैं, कुछ लोग तो उब जाते हैं, तुम ही सृष्टि करता हो, तुम ही पालन करता हो, तुम ही नाश करते हो, ये कहने की बार बार जरूरत क्या है, बार बार कहने के बाद भी तो भूल जाते हैं। जब बार बार कहना जरूरी है आई लव यू, तो यह कहना जरूरी नहीं है, पता है ना कि तुम प्रेम करती हो, तुम प्रेम करते हो, फिर भी क्यों कहते हैं आई लव यू, नहीं कहने पर नाराज भी हो जाते हैं लोग। तो भगवान सचमुच जगत के कंट्रोल, वो नकली लव, लव नहीं, लस्ट को लव कहते हैं, लव तो केवल भगवान से किया जा सकता है। तो भगवान सचमुच जगत के कंट्रोलर है, तो इसको कहने में क्या दिक्कत है, क्या इसमें शर्म की बात है, ये बार बार जानना चाहिए, बार बार कुछ चीज है जिसको बार बार जानना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अनुदर्शनम भगवान कहे हैं, अनुदर्शन मतलब ध्यान देना इस पर मुड़ मुड़ कर, अनु माने अनु का अर्थ होता है कंटिन्यूअस, बार बार रिपीटेशन, बार बार इस पर ध्यान देना चाहिए। तो किस पर ध्यान, जन्म पर मृत्यु पर, मरना है एक दिन, जन्म का अर्थ इसके पहले मैं नहीं था, जन्म एक ऐसी प्रक्रिया है कि मैं इस जगत में आया, इसके पहले कहाँ था पता नहीं, इसके पहले माँ के गर्भ में आया, यहाँ आने से पहले हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि 9 महीना रिसेप्शन में रहा, जब रिसेप्शन इतना शानदार है तो आगे क्या होगा पता कर लीजिए, कंजेस्टेड मल मूत्र के गड्ढे में, कोई वहां स्वागत सत्कार किस रूप में किया जा रहा है असमर्थ अवस्था में, तो आगे क्या होगा ये तो पता है। मृत्यु जन्म के समय याद रखना चाहिए कि उसी प्रोसेस से आना पड़ेगा जन्म, और मृत्यु मतलब जिसको अपना समझकर सजा रहे हैं उससे किक आउट कर दिया जाएगा, वो घर मकान बैंक बैलेंस पद पोजीशन मान सम्मान सब खत्म नहीं रहेगा। और इसके बीच में जरा व्याधि, बुढ़ापा और व्याधि मतलब रोग तकलीफ, सर्दी जुखाम घुटने में दर्द, ऋतु परिवर्तन से थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, हमेशा ये बना रहता है, कुछ न कुछ समस्या रोज रोज क्यों हो रहा है, ये विचार करने लायक है। एक राजा थे, मैं नाम तो नहीं जानता, वो एक स्पेशल मंत्री रखे थे अपने साथ, वो पीछे रहता था 1 फुट पीछे 1.5 फुट, जब उनको राजा धीराजा महाराजा की जय हो माला पढ़ने लगता, लोग स्तुति करने लगते, तब उनको धीरे से उनका पीठ छूता, पीछे देखते महाराज आप भी मरेंगे। याद दिलाने के लिए, कहीं भूल न जाए कि हमको यही सम्मान मिलता रहेगा, कहता आपको भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, आप मरेंगे, कहते हाँ हाँ ठीक। तो फिर सब लोग कहते ये क्या कह रहा है, केवल वही सुनते थे, और स्पेशल वेतन देकर उसको रखे थे याद दिलाने के लिए कहीं भूल न जाए, कहीं भूल न जाए कि हमको मरना है, भूल ही जाता है आदमी कि प्रभुता पाई काहू मद नाही, जब मान सम्मान मिलता है तो व्यक्ति भूल ही जाता है हम क्या है, अपना पोजीशन भूल जाता है, हम दास हैं, दासानुदास इसको भूल जाता है, हमको सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं मिला, उसको सोचने लगता है जो फालतू चीज। तो इस प्रकार अर्वाचीनो विसर्गस्य, इस विसर्ग के पहले हम कुछ नहीं थे, न हम इंद्र थे, न त्रिलोकी के मालिक थे, कुछ नहीं, कीट पतंग, धात वेदी तुम अर्हति, हे प्रभु आप इस विसर्ग के विधाता हैं, परम निया, धाता माने स्वामी करने वाला आप ही हैं, जैसे ब्रह्मा को धाता कहते हैं, तो वेदी तुम अब जानने योग्य आप हैं, लेकिन अर्हति हम इसको न ये नौ अर्वाचीन के लिए और वेदितुम के लिए भी नौ है, कॉमन है शुरू में। मैं आपको नहीं समझ पाता, हम आपको नहीं जानते हैं, केवल हम आपको नमस्कार कर सकते हैं और कोई मेरी क्षमता नहीं है, आपकी महिमा गाने की क्षमता मेरे पास नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको अर्पित करने की कोई पदार्थ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या मैं भगवान आपको दूं, क्या दूं, सब कुछ के मालिक आप हैं तो आपको हम क्या दूं, यह कहकर कुछ नहीं करते कुछ करते ही नहीं, आप सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन जानते हैं इसमें साइंस क्या है, जैसे एक पिता मार्केट से कोई फल या मिठाई लेकर आया और अपने 5-7 वर्ष के बच्चे के हाथ में थमा दिया, तो बच्चा मिठाई का पॉकेट लिया, खोला, देखा, पापा आप ले लीजिए थोड़ा, उनको चाहिए नहीं, अरे नहीं नहीं बेटा तुम खाओ, नहीं थोड़ा सा ले लीजिए, केवल इतना कहने से वो पिता खुश हो जाता है, उसको नहीं चाहिए, फिर भी केवल कह देने से कि आप ले लीजिए। और कभी कभी होता है ठीक इसके विपरीत, बेटा के हाथ में मिठाई आ गया, खोलकर देखा और पापा कह दिए बेटा मुझे भी देना, लेकिन भागने लगता है, अरे दे दो, कि माँ भी कहती है दे दो ना, किसी को नहीं देगा, तब कहते कितना ही हरामी है इसको लाया मैं और मुझको ही नहीं दे रहा। अगर मान लीजिए नहीं मांगते नहीं देता तो कोई बात नहीं, चलो उसके लिए लाए वो खाए, लेकिन मांग दिया पिता इसके बाद भी नहीं देता है तो कितना बदमाश है बतलाइए। वैसे ही भगवान मुंह खोलकर कहते हैं अरे खबूचर दुनिया का चीज खाते रहो लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो यो में भक्त्या प्रयक्षति। मैं जानता हूं कि सब चीज नहीं दे पाओगे, पत्ता दे दो, फल दे दो, तीन आइटम 75% पेड़ से मांग दिए, तो पता नहीं फैक्ट्री वाले महंगा देंगे तो ये लोग देंगे मुझको कि नहीं तो फैक्ट्रियों का सामान नहीं, पेड़ का पत्ता, फल और फूल, किसी फैक्ट्री किसी कंपनी के मालिक का अधिकार नहीं है, धरती से निकलता है, वो ले लो। अब तो वो चीज भी कंपनी वाले उस पर कब्जा कर रहे हैं, पेड़ से निकलता है दुकान में रखकर स्टिकर लगा देते हैं मेरा है। महाराज श्री एकदम सत्य घटना बतला रहे थे कि एक 14 वर्ष का लड़का अमेरिका में फ्रिज से लाया सेव निकाला, तो मैं कहा कि ये कहां से आता है, तो उसको स्टिकर देखकर बताया, उसके ऊपर सटा था, तो कहे जानते हुए कैसे बनता है, ये कंपनी वाले बनाते हैं। महाराज कहते मैं जोक नहीं कर रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, तो कह रहे ट्री से होता है, ट्री से होता है, तो अपनी मम्मी से पूछता है मम्मी ये ट्री से होता है एप्पल, अब कौन समझाए, कहते हाँ बेटा ट्री से होता है, ट्री से होता है, एकदम चकित था, उसको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ट्री में पेड़ में लगता है। वो कंपनी का नाम बता, दूध तो पक्का कंपनी का है ही, वो गाय से दूध मिलता है, तो फिर महाराज कहे कि तब मेरी जिज्ञासा बढ़ी, अच्छा दूध कैसे बनता है, कंपनी वाले बनाते हैं, डेयरी वाले बनाते हैं, उसका नाम बढ़, तो महाराज कहे ठीक ही कह रहा है, इस समय दूध गाय भैंस है कहाँ, तो कंपनी वाले पाउडर वाउडर बनाते हैं तो वो तो चलता है, लेकिन उस बच्चे को ये भी पता नहीं है कि गाय भैंस से दूध निकलता है और पेड़ से फल, तो इतना कब्जा कर लेते हैं कंपनी वाले, भगवान को भी पता था, इसलिए कह दिए कि पेड़ का सामान दे देना, फल फूल और पत्ता, और जल सब जगह उपलब्ध है, वो हमारा ही दिया हुआ चीज है, उसमें से दे दो, अगर भगवान ऐसा कहते हैं इसके बाद भी लोग नहीं देते हैं तो भगवान कैसा लग सकता है बताइए, उसी बाप की तरह बुरा लग सकता है ना। तो इस बात को समझना चाहिए कि भगवान ही सबके कंट्रोलर है, मालिक है, यह जानना चाहिए, और यह इस रूप में स्वीकार करना जानना, यह है दैन्यता विनम्रता, भगवान के चरणों में बार बार झुकना, बार बार प्रणाम करना, इस ज्ञान में हो जाना, यह है विनम्रता। ज्ञान भक्ति का प्रभाव है विनम्रता, नम्रता हो जाती है, नम्रता का प्रैक्टिकल रूप है प्रणाम करना, जब पेड़ में फल लगता है तो पेड़ झुक जाते हैं, झुकते हैं। उसी प्रकार किसी के पास ज्ञान होता है, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम। जब किसी को ज्ञान होता है, विद्या प्राप्त होता है, होती है, तो उसका प्रत्यक्ष रिजल्ट है कि वो विनम्र हो जाता है। और अगर विद्या और ज्ञान प्राप्त होकर भी जो उदंड हो गया, तो इसका मतलब वह रियली ज्ञान प्राप्त किया नहीं है। फल तो जितने फलदार वृक्ष हैं झुक जाते हैं, एक वृक्ष है खजूर का, ताड़ का, वो नहीं झुकता है। उसमें भी फल लगते हैं लेकिन वो झुकता नहीं है। तो ताड़ के पेड़ जैसा उदंड नहीं होना चाहिए, झुकना चाहिए। ठीक विनम्रता के ठीक विपरीत है उदंडता, एकदम ऐठ में रहना, अहंकार में रहना। तो श्री भगवान की समर्थता और अपनी दैन्यता का अर्थ है बार बार विनम्र भाव से उनको प्रणाम करना, झुकना। कुंती महारानी भगवान के रहस्य को जानती थी, ये हमारा भतीजा मात्र वसुदेव का बेटा ही नहीं है, ये भगवान है। इस पर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इतने दिनों तक क्यों नहीं चर्चा की कि भगवान है। महाभारत युद्ध के बाद सारे लोगों का तर्पण हो गया, इसके बाद कहने लगी, जब द्वारिका जा रहे थे तब स्तुति कहते हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। ये सब बातें बाद में क्यों कहने लगी, तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब तर्पण चल रहा था जमुना जी में, मरे हुए अपने स्वजनों के लिए महाराज युधिष्ठिर तर्पण दे रहे थे, पांडव लोग तर्पण दे रहे थे, तो एक एक व्यक्ति का नाम रखा जाता था और उसके नाम पर मंत्र बोलकर सब लोग बारी बारी से तर्पण देते। तो ज्यों ही अभिमन्यु का नाम आया और लोगों का नाम आता था तो लोग विलाप करने लगते थे, दुर्योधन दुशासन, तो अब बतलाइए गंधारी पर क्या बीतता होगा, धृतराष्ट्र पर क्या बीतता होगा, सौ सौ पुत्रों को खो चुके हैं, सब रो रहे थे। तो सबका तर्पण होते होते करीब करीब पूरा होने लगा तो कुंती महाराज युधिष्ठिर को एकांत में बुलाई, बेटा कर्ण के लिए भी तर्पण कर दो। तो कर्ण के लिए, चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर एकदम चकित हो गए, कर्ण के लिए क्यों, वो हमारा कौन अपना है। कहते हैं, बेटा तुम्हारा सहोदर है, अग्रज है, तुमसे बड़ा भाई है, जिस गर्भ में मैं तुमको धारण की उसी गर्भ से कर्ण है तुमसे पहले। महाराज युधिष्ठिर के तो सिर पर वज्र गिर पड़ा, इतना अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर माँ से कितना प्रेम कर सकते हैं आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। उस माँ को श्राप दे दिए कि तुम इतनी रहस्य की बात छिपा कर रखी, अगर मैं ये जान गया होता तो इस भावना में रहकर उसके साथ युद्ध किया कितना भारी अनर्थ हुआ, मैं तुमको श्राप देता हूँ, यह गोपनीयता जो छिपाने की क्षमता है वह तुम्हारे कारण मैं समस्त स्त्री समाज को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी रहस्य की बातें नहीं छिपा पाएगी। श्राप दे दिए। तो अब जब श्रापित हो गई कुंती, तो जो रहस्य की बात जानती थी कि हमारा भतीजा भगवान है, उसको भी कहने लगी। वो छिपा कर रखी थी, जानते हुए भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं शायद श्रापित होकर कुंती आज बोलना चालू करते, श्रापित होकर बोलने लगी कि आप भगवान हो, एकदम कहने लगी हम नमस्कार करते हैं, नमस्ते पुरुषम त्वादम। पहले श्लोक पर लिखते हैं, बुआ जी तुमको हो क्या गया, तुम हमारी माँ देवकी और जशोदा की तरह पूज्या हो, मैं तुम्हारा चरण छूता हूँ, आज मुझको क्यों प्रणाम कर रहे हो। तो नहीं, तुम पुरुष हो, नमस्ते पुरुषम, तो पुरुष मैं ही केवल थोड़े हूँ, ये सभी पुरुष हैं। तो आद्यम सारे पुरुषों के मूल उत्स हो, आदि पुरुष हो, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, ईश्वरम सबके कंट्रोलर हो, और प्रकृति परम इस प्रकृति से परे जो स्पिरिचुअल जगत है उसके भी नियंता हो। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। तो बुआ जी ये बात तो और लोग नहीं जानते हैं, जो तुम कह रही हो, तो वहां अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, इस समस्त जीवों से तुम अलक्षित हो, कोई नहीं जानता, लेकिन तुम अंतर भी हो, भीतर परमात्मा रूप से, और बहिर सामने रथ पर खड़े हो, सब जगह हो, कोई ऐसा स्थान नहीं। इस रूप में तत्व का विवेचन कुंती करने लगी तो यह चक्रवर्ती ठाकुर इस पर कहते हैं शायद श्रापित होकर, लेकिन कुंती सब कुछ जानने के बाद उदंड नहीं हो गई, विनम्र हो गई, नमस्कार करती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंती महारानी का 26 श्लोक की स्तुति नमः से प्रारंभ होकर नमस्ते समाप्त होता है। प्रभुपाद कहते हैं नमः के पिटारी में स्तुति रखी है, नमः से प्रारंभ करके नमः के अंत में, यहाँ नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम से प्रारंभ करती है, और अंतिम श्लोक है कि यहाँ गोप्या दे तो एक तागसी, हाँ, श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णु भाव निध्रुग राजन्य वंश दहना पवर्ग वीरज गोविंद गोदिज सुराति हरा अवतार जोगेश्वर खिला गुरु भगवान नमस्ते। अंतिम में नमस्ते और शुरू में नमस्ते, दोनों तरफ नमस्कार। तो इसमें आचार्यों का कहना है कि महारानी कुंती ज्ञान के कारण बिल्कुल झुक गई, जान गई रहस्य, और रहस्य जानने के बाद विनम्रता में झुक कर नमस्कार करे, बार बार नमस्कार कर गए, शुरू और अंत में, केवल नहीं, नमः कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। फिर कहती है नमः पंकज नाभाय, नमस्कार करती है, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, नमः नमः प्रणाम करें। दूसरा कोई साधन नहीं है। क्रमशः अगर श्लोक के कुंती महारानी को स्तुति पर विचार करेंगे तो कहती है कि ये सारे जगत क्यों नहीं जानता है, अगर भगवान पूछे कि क्यों नहीं जानता है, बुआ जी तुम जान गई और लोग क्यों नहीं जानते, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षज मभ्यम, जो माया की पर्दा लगाए हो ना, इससे लोग नहीं देख पाते हैं। तो न लक्ष्य से मूढ़ो दिशा नट्यो नाट धरो जथा, फिर आगे तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्चिमे स्त्री, सब कुछ बतलाते हुए भी कह रहे कैसे मैं एक स्त्री जान सकती हूँ। बड़े बड़े परमहंस अमलात्मा मुनि लोग जिनके रहस्य को समझ पाते हैं, उनको हमारे जैसी मूढ़ दिशा स्त्री कैसे समझ पाएगी, हम नहीं समझ पा, अपनी विनम्रता में कह रही है। ऐसा नहीं है कि कुंती स्त्री है इसलिए नहीं समझ पा रही है, यह कारण है, समझ कर विनम्रता में कह रही हम तो स्त्री हैं, स्त्री कहकर कह रही हम कम बुद्धि वाले हैं, अथवा हमको कहाँ फुर्सत है घर के काम धंधों से, दोनों अर्थ करते हैं। इतना सत्संग करने और धाम में जाने और भागवत पर विचार करने को स्त्रियों को कहाँ फुर्सत है, कुछ टीकाकार ऐसे भी अर्थ करते हैं। तो केवल यह कह देना कि स्त्रियों को समझ नहीं है, तो विद्या की अधिष्ठात्री स्त्री है सरस्वती, बेचारी को अज्ञान का कभी मुअसर नहीं हुआ। भगवान सूर्य अंधकार को देखने के लिए तरसते हैं, सरस्वती मूर्खता को, उनके भाग में है ही नहीं। सूर्य चाहकर भी रात्रि नहीं देख सकते, उनके पास जो स्वाभाविक प्रकाश है वो अंधकार को समाप्त कर देता है। वैसे सरस्वती मूर्खता में नहीं कभी आ सकती, क्योंकि वो ज्ञान में है। तो इस प्रकार स्त्री कहकर अपनी विनम्रता व्यक्त कर रही हैं। फिर उसी दैन्यता में कहती है कृष्णाय वासुदेवाय, मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं तो नमस्कार कर रही हूँ। तो विनम्रता का द्योतक है नमस्कार, सभी लोग जितने स्तुति किए हैं उनमें विनम्र भाव से झुक कर नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी तो यहां तक कह दिए, ब्रह्मा जी की बात आप सुनेंगे और आज के तथाकथित विद्वानों और भगवानों से ब्रह्मा की तुलना करेंगे तब आश्चर्य हो जाएगा कि इस समय के लोगों की क्या दशा है। ब्रह्मा जी कहते हैं तस्मै नमो भगवते, दूसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का 12 नंबर का श्लोक है, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा कभी, 2 5 12। तो उसमें कहते हैं तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, हे कृष्ण, हे भगवान, हे वासुदेव, हम आपके चरणों का को प्रणाम करते हैं, हम आपके स्वरूप का ध्यान करते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, क्या आप किस विशेषता को याद कर रहे हैं? जन माया दुर्जया, जिसके दुर्जन माया के प्रभाव में आकर लोग माम ब्रुवंती जगत गुरुम, आपकी माया से आपको नहीं समझ पाते हैं, तब वो मूर्खता कर बैठते हैं। क्या मूर्खता करते हैं? कि मुझको जगत गुरु कहते हैं। आपकी माया से आपके स्वरूप को नहीं समझने के कारण लोग मुझको भी जगत गुरु कहते हैं। ये मूर्खों की धारणा है, मैं जगत गुरु नहीं हूं, लेकिन मूर्ख लोग मुझको जगत गुरु कहते हैं, क्योंकि वो माया से आहत है, प्रभावित है। ब्रह्मा जैसा व्यक्ति अपने को जगत गुरु स्वीकार नहीं कर रहा है, और आज जगत गुरुओं का लिस्ट लगी हुई है पूरा। सभी लोग जब तक जगत गुरु नहीं लिखेंगे तब तक उनका डिग्री पूरा ही नहीं होता। जगत गुरु, महामंडलेश्वर, क्या क्या, ब्रह्मा को शर्म आ रही है कि लोग मुझको जगत गुरु कहते हैं, और वास्तव में ब्रह्मा जी जगत गुरु हैं। इस प्राकृत जगत में ब्रह्मा से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। सबसे पहला शिष्य भगवान के इस प्राकृत जगत में ब्रह्मा जी हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कहकर एकदम प्रारंभ में सबसे बड़े विद्वान को भगवान ने ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती जत सूर्य, जिसको ज्ञान को समझने के लिए बड़े बड़े सूरी विद्वान मोहित हो जाते हैं, वो ज्ञान ब्रह्मा को दिया गया। और उस ज्ञान को धारण करने वाला व्यक्ति जगत को ज्ञान दिए, नारद जी को ज्ञान दिए, अन्य सभी पुत्रों को ज्ञान दिए, सनत कुमार को ज्ञान दिए। वो जगत के आदि गुरु ब्रह्मा कह रहे हैं कि मूर्ख लोग मुझको माम ब्रुवंती जगत गुरु, मुझको जगत गुरु कहते हैं। यह है विनम्रता। जगत गुरु अपने जगत गुरु पना को स्वीकार नहीं कर रहा है विनम्रता में, और नमस्कार कर रहा है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, हे वासुदेव, मैं आपका ध्यान करता हूं। अयन माया, जिनकी माया के प्रभाव से दुर्जया, ये दुर्जन माया है, मिटती नहीं, और लोग माम ब्रुवंती जगत गुरु, मुझको जगत गुरु कह देते हैं, यह विनम्रता है। तो इसको कहते हैं विनम्रता, इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान के अभाव में लोग उदंड है, श्योर है। जिनके पास उदंडता है, अहंकार है, इसका मतलब वो मूर्ख है, वो नहीं कुछ जानता है। जहां भी अहंकार 1% भी दिख गया तो उस परसेंटेज में वो मूर्ख है। थोड़ा सा भी अगर अहंकार दिखा तो इसका मतलब कि उतना परसेंट तो निश्चित मूर्ख है। और विनम्रता, जहां केवल विनम्रता दिख रहा है तो समझना चाहिए असली ज्ञानी यही है। त्रिणादपि सुनिचेना तरोरी व सहिष्णा, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरी। तो इस प्रकार अब भक्तों की स्थिति क्या होती है? वे विनम्र होते हैं, स्वीकार करते हैं। भागवत के उदाहरण है, भागवत से ही आपको उदाहरण दे रहे हैं कि जब चित्रकेतु महाराज भगवान शिव पर उंगली उठा दिए कि पत्नी को गोद में लेकर बाबा ये क्या फैशन चालू कर दिए कथा कहने का, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं और पत्नी को गोद में, वो भी ऐसे केवल बैठी नहीं, हाथ से आलिंगित है, बाएं हाथ से पार्वती को पकड़कर कथा कर रहे हैं। चित्रकेतु महाराज देखकर चकित हो गए, क्या कर रहे हैं? देव में देव महादेव, जज्जत आचरती श्रेष्ठ, तत्त देव तरो जन, आगे के लोगों का क्या होगा? ये तो फैशन चालू हो गया, लोग बस पत्नी को गोद में लेकर कथा करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जब बोल दिए तब शिव जी को ध्यान आया, अच्छा गोद में बैठी है अभी तक। तब शिव जी मुस्कुराने लगे, कुछ नहीं बोले। अब पार्वती को क्रोध आ गया, पार्वती कहे अच्छा वत्स से उतार संबोधन के, बेटा इतना अहंकार हो गया? ब्रह्मा और शिव पर उंगली उठाने लगे, तू इस गंधर्वों का राजा बनकर इतना अहंकार में आ गया, तू अभी गिर और असुर योनि प्राप्त कर, श्राप दे दी। तब चित्रकेतु पर क्या रिएक्शन हुआ, उतरे विमान से, प्रणाम किए, माते मुझे क्षमा करो, मेरे कठोर वचनों से आपका चित आहत हुआ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ कहा हूं इसमें कोई समझौता नहीं करने जा रहा हूं, इसमें नहीं, लेकिन मेरे बातों से आपको बुरा लगा, बुरा किसी को नहीं किसी के व्यवहार से लगना चाहिए, इसके लिए क्षमा मांग रहा हूं। आप जैसे देवता त्रिकालदर्शी लोग जीव के कर्मों की सूचना देते हैं श्राप और वरदान के रूप में, यह श्राप आपका दिया हुआ चीज नहीं है, मेरे कर्मों का रिजल्ट है, मैंने भगवान शिव पर उंगली उठाया, इसका फल मुझको भोगना चाहिए, आपने सूचना देकर एक उपकार किया, मुझे असुर योनि प्राप्त होना चाहिए, अवश्य निश्चित रूप से मैं इस को स्वीकार करता हूं। एकदम स्वीकार करके बिना श्राप दिए, चाहे तो पार्वती को श्राप दे सकते थे, वे भी इतना समर्थ थे, लेकिन बिना श्राप दिए हंसकर स्वीकार करके चले गए प्रणाम करके। तब भगवान शिव कहते हैं, देख ली भगवान हरि के भक्तों की महिमा। तो उसी पर भगवान रुद्र कहते हैं, देखो नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति, यह श्लोक है छठवें स्कंद के 17वें अध्याय के 28 नंबर का श्लोक। भगवान शिव बोलते हैं, रुद्र कहते हैं, नारायण परा सर्वे, जो नारायण का परायण है, पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस है, न कुतश्चन विभ्यति, वह कहीं डरता नहीं है। डरने का मतलब यह नहीं कि दूसरे को सताता है, निर्भय है तो सबको तंग नहीं करता है, नहीं डरता है, किससे, स्वर्गा पवर्गो नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना, 6, 17, 28 नंबर का श्लोक भगवान शिव बोल रहे हैं। स्वर्ग अपवर्ग और नरक किसी से नहीं डरता, अपि तुल्यार्थ दर्शिना, सब जगह उसकी समान दृष्टि बनी रहती है, नरक में भी रहता है तो सोचता है मैंने बुरा कर्म किया, रिजल्ट दूसरा भोगेगा, मुझे भोगना ही चाहिए, आसानी से भोगता है, तो क्योंकि वह जानता है कि ये अपने कर्म का फल है, अपने कर्म का फल है, कोई दूसरा इसमें कुछ नहीं किया है, कोई नहीं किया है, तो इस प्रकार वह जानता है, सुख को और दुख के स्थिति को भी जानता है कि अच्छे कर्मों का क्या रिजल्ट होता है, बुरे कर्मों का क्या, वैष्णव पर उंगली उठाने का यही रिजल्ट होना चाहिए, स्वीकार कर लिए, और पता है सुख दुख कहाँ है, केवल भगवान के भजन में सुख है, चाहे किसी भी स्थिति में रहें भजन करें। तुलसीदास जी एक बात कहते हैं कि लोगों को सुख प्राप्ति का होड़ लगा है, मिलने के बाद भी कम पड़ता है, कोई विधायक एमपी बन गया तो इलेक्शन के समय तो इतना ही एम है कि मैं एमपी बन जाऊं, लेकिन एमपी बनना ही सब कुछ नहीं, अभी मंत्री बनना बाकी है, अगर मंत्रिमंडल में भाग नहीं लिया तब दुख, अब मंत्री भी बनकर राज्य मंत्री बन गया तो अभी कैबिनेट में नहीं रहा यार, गड़बड़ हो गया, अच्छा कैबिनेट मंत्री बन गया तो अभी प्राइम मिनिस्टर बनना बाकी ही है, तो राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, वास्तव में है भी, ये तुलसीदास कहते हैं मत झगड़ो मैं फाइनल रिजल्ट बतला रहा हूं, तुलसीदास बिचारी कहे भजन बिना सब जगत दुखारी, भजन नहीं करोगे तो झगड़ा लगा ही रहेगा, भजन करना पड़ेगा, तो भक्त लोग भजन की महिमा जानते हैं, और भगवान कहते हैं जो भजन करता है, एकादश स्कंद के 20वें अध्याय के 33 नंबर का श्लोक अद्भुत भगवान कह रहे हैं कि सर्वम मद भक्ति जोगे न मद भक्तो लभतेंजसा स्वर्गापवर्ग मध्धाम कथंचिद यदि वांछति। भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि सर्वम मद भक्ति जोगे न मद भक्तो लभतेन जैसा, हे उद्धव जो कुछ चाहे कुछ भी अपने मुंह से बोल दो वो हमारे भक्त आसानी से प्राप्त कर लेता है, अगर कहे कि इंद्र बन सकता है निश्चित, ब्रह्मा बन सकता है निश्चित, वैकुंठ में आ सकता है निश्चित, सिद्धि प्राप्त कर सकता है, हाँ सर्वम मद भक्ति जोगे न, सर्वम माने सब कुछ,
सब कुछ मेरे भक्ति के प्रभाव से प्राप्त कर सकता है। मद भक्त मेरा भक्त लभते अंजसा आसानी से, उसके लिए टेंशनबाजी नहीं, प्राप्त ही कर लेता है जो चाहे हो। स्वर्ग हाँ, अपवर्ग हाँ, मद धाम मेरा वैकुंठ भी। लेकिन एक बात लास्ट में कहते हैं, कथंचित यदि वांछति, कदाचित वो चाहे तो। समस्या है कि मेरी भक्ति करते करते वो चाहता ही नहीं है कुछ। मिल तो सब जाएगा लेकिन वो चाहता ही नहीं। चाहे तो कथंचित कदाचित यदि वांछति, यदि वांछति कहकर कर रहे हैं, अगर वो चाहता है सब चीज मिल जाता है तो ये अधूरा रह जाएगा। इसका मतलब भजन करके बनियागिरी करने लगा। प्रहलाद महाराज से नृसिंह देव कहे, बेटा कुछ मांग लो। कहे, नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांग लो बेटा, नहीं चाहिए। तो कहे, अरे मांग लो, मैं कह रहा हूं। कहते, अच्छा आप मुझे बनिया का बेटा समझ रहे हैं, मैं सौदा करने आया हूं, भजन किया तो इसके बदले में कुछ मांग लो, ये क्या तरीका है। प्रहलाद महाराज गुस्सा में हो गए। भगवान मुस्कुराए, अच्छा ठीक है चलो, लेकिन जानते हो बिना दिए मुझे संतोष नहीं हो रहा है, कुछ तो मांग लो। मैं चाहता हूं, तुमको इच्छा नहीं है मैं जान गया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं तुमको दूं, इसलिए बेटा कुछ मांग लो। तो कहते हैं, ठीक है प्रभु तब दे ही दीजिए। आज पता नहीं मेरी मानसिकता है कि मैं ब्रह्मचारी रहूं, विरक्त रहूं, और 50 वर्ष के बाद मन में आए विवाह कर लूं, कोई निश्चित है कब मन बदल जाएगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कभी भी किसी भी वस्तु की कामना न हो, यह वरदान मांग लिए प्रहलाद महाराज। तब नृसिंह देव कहता, ठीक है तथास्तु, ऐसा ही हो गया, वरदान मिल गया। इसके बाद समझने लगे प्रहलाद महाराज, सोचने लगे कि मैं पिता के लिए कुछ कहा ही नहीं। एक बात और है नृसिंह देव, पहले तो निष्कामता का वरदान मांग लिए, मेरे बाप का क्या होगा, वो तो बहुत सताया है भक्तों को और आपका भी अपमान किया है, ये नरक नहीं जाना चाहिए, पैर भी करने लगे। तो कहे, नहीं प्रहलाद ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे जैसे भक्त जिस वंश में आ गया उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। ये तो तुम्हारा दूसरा पीढ़ी का बाप है, उसका बाप कश्यप, कश्यप के बाप मरीचि, मरीचि के बाद बाप ब्रह्मा और ब्रह्मा के बाप मैं। तुम्हारे भजन से अभी तो 5वां पीढ़ी है, मेरा भी उद्धार हो गया, मतलब 21 पीढ़ी का उद्धार। तो ये है, कुछ नहीं चाहते कथंचित यदि वांछति, चाहने वाला भी कुछ नहीं चाहने लगता है। लक्ष्य बनाकर गए ध्रुव महाराज के पिता से उत्कृष्ट राज प्राप्त करूंगा। भगवान जब आ गए, जब तक अज्ञान था तो पिता से उत्कृष्ट राज ही सब कुछ था। जब वेदमय शंख गाल से स्पर्श किया तब पता चल गया कि मैं महामूर्ख हूं। प्रभु नहीं नहीं, मैं कांच ढूंढने के लिए आ गया लेकिन हीरा दिखाई दे रहा है तो शीशा लेकर चला जाऊं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ध्रुव भी बोलने लगे, तो तू तो संकल्प यही किया था, मेरी बुद्धि देवताओं ने मार दी, सारे इंद्रियों पर देवता लोग रहते हैं, वो गाइड ही नहीं किए, मैं मूर्खता में ऐसा संकल्प कर लिया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मुझे तो भक्तों के संग में आपका केवल श्रवण कीर्तन चाहिए। तो भगवान फेर में पड़ गए कि ये तो बड़ा उत्कृष्ट बात तो सही कह रहा है, लेकिन भगवान कहे मेरे ऊपर भी था, जरा विचार करो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि 5 वर्ष का बच्चा इतना कठोर तपस्या किया, विष्णु आकर ब्रेन वॉश कर दिया, इसलिए तुमको कुछ लेना पड़ेगा मेरी प्रतिष्ठा के लिए, जाओ अपने पिता के राज सिंहासन पर 36,000 वर्ष राज करो और आज के बाद तुम्हारे नाम से मैं वैकुंठ को रजिस्ट्री कर देता हूं। वहां भी चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं वैकुंठ का वो पार्ट पहले से था अनादि काल से, लेकिन उस दिन ध्रुव के नाम से रजिस्ट्री हो गया, वो ध्रुव के नाम से जाना जाने लगा, ध्रुव लोक, वो महाप्रलय में भी नाश नहीं होता है। तो कथंचित यदि वांछति, भगवान को पता है कि चाहते ही नहीं है, अगर चाहे तो कुछ भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्थिति कैसे आती है, एक प्रश्न होगा ना कि ये स्थिति कैसे आए। तो भगवान इसके पहले इसी अध्याय में कहते हैं 9 नंबर के श्लोक में, 11-20-9 में, कि तावत कर्माणी कुर्वीत, जहां रह रहे हो वहां वही काम करते रहो। जावन निर्वेदन जजावता, जब तक वैराग न हो जाए तब तक कर्म करते रहो। कर्म करने से वैराग हो जाएगा? कहते बता रहा हूं, ज्यादा अधीर मत हो, स्पष्ट सुनो कि क्या होता है। मत कथा सौरादौआ श्रद्धा जावन न जायते। मेरी कथा दी, कथा दौ कहते हैं श्रवण कीर्तन, मत कथा सौरादौआ मेरे विषय में सुनना बोलना स्मरण करना। जब नवधा भक्ति का आचरण करने लगोगे तब समझ जाओ कि वैराग्य ओरिजिनल हुआ। अगर वैराग्य के बाद भी मेरी कथा में रुचि नहीं हुई, दूसरे कामों में फंस गया, तो उस वैराग्य का क्या मतलब है? तावत कर्माणी कुर्वीत, तब तक कर्म करते रहो। वैराग लेना ही नहीं पड़ता, लेना नहीं पड़ता है, हो जाता है। और लेने वाला तो फंस जाता है कहीं, झटका से स्त्री से झगड़ा करके जाने वाला विरक्त है, वो दूसरी उससे अच्छी स्त्री मिल गई तो विवाह कर लेगा। लड़कों से झगड़ा करके सेवकों से परिवार के झंझट से निकल उब कर जाने वाला विरक्त नहीं है। विरक्ति उसको कहते हैं जब उत्कृष्ट वस्तु का भान हो जाए और निकृष्ट अपने आप छूट जाए। जब भगवान के रस का अनुभव हो जाता है तो प्राकृत जगत का ये तीखापन अनुभव हो जाता है, और जब संसार का तीखापन अनुभव हो जाता है तभी गुरु के शरण में जाना चाहिए। तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। भगवान के विषय में सुनते सुनते कथा सुनते सुनते जब पता चल जाता है कि यही उत्कृष्ट चीज है तो निकृष्ट जगत को छोड़ देता है अपने आप, और जब उस स्थिति में छोड़ता है तब वह भजन करता है। इसलिए तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म करना चाहिए जब तक निर्वेद न हो जाए, वैराग न हो जाए। तो वैराग कैसे होगा? मत कथा सुना दो हुआ मेरे कथा सुनने से। आज जब वैराग हो जाएगा ओरिजिनल, तब स्वर्गापवर्ग मत धाम कथनचित यदि वांछति, कुछ भी नहीं चाहता है, सब उपलब्ध है लेकिन चाहता नहीं है, यह भक्तों की स्थिति है। तो यहां ब्रह्मा जी आदि देवता, इंद्र आदि देवता भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं, आप ईश्वर हैं, सबके नियामक हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं, कोई वस्तु नहीं, केवल नमस्कार है। ये है पूर्ण ज्ञान, केवल नमस्कार। अपनी विनम्रता स्वीकार करना, भगवान की समर्थता स्वीकार करना, कर लेना, यही भक्ति है, यही दैन्यता है। भगवान सर्वसमर्थ है, हम बिल्कुल नगण्य हैं। भगवान सिंधु है, हम एक बिंदु हैं। अपना औकात सीमा में है, वो असीम कृष्ण है। तो हम ससीम है, सीमा में है, और भगवान असीम है। तो इस बात को समझना प्रत्येक भक्तों का कर्तव्य है। इन स्तुतियों के द्वारा देवता लोग यही बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। ठीक है, देर हो गया ना? हाँ? क्या नहीं? हाँ, वो तो भगवान की बात है, कहने में कह दिया हूँगा। पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा ब्रह्मा जी बनाए हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुधिरेव च अहंकारम इतियम में भीना प्रकृति अष्टधा। ये तो भगवान की प्रकृति है, लेकिन उसके बाद पेड़ पौधा ये सब ब्रह्मा जी बनाए हैं, या उनके और ये सब कश्यप आदि ये लोग बनाए हैं, प्रजापति लोग आए। हाँ, देह के तत्व ब्रह्मा जी को मिला भगवान के द्वारा, और उसे ब्रह्मा जी बनाए, और इसके बाद फिर प्रजापति लोग बनाए।
हरे कृष्ण जी, ध्रुव लोक प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है, तो इसको क्या समझे प्रभु? जैसे ब्रह्मा जी का अंत होता है, शरीर छोड़ते हैं, तो पूरा यूनिवर्स ही भगवान के गर्भ में प्रलय में समा जाता है। हाँ। तो उस समय में वो ये सब स्थिति क्या रहता है जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है, ऐसी जगह ध्रुव लोक आते?
ध्रुव लोग दिखता है यहाँ से छोटा, ध्रुव तारा के रूप में लोग देखते, सप्तर्षि लोग परिक्रमा करते हैं, लेकिन भागवत के अनुसार भगवान जो कह रहे हैं वो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता, जिसकी स्तुति परिक्रमा बड़े बड़े सप्तर्षि लोग करते हैं। तो इस प्राकृत जगत में दिखता है, यहां से दिख रहा है, इसका मतलब कि वो यहां का नहीं है, वो प्राकृत वैकुंठ लोक है। इसीलिए चक्रवर्ती ठाकुर कहे ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कहते हैं कि वो वैकुंठ का पार्ट है, तो फिर प्राकृत लोक नहीं कह पाएंगे उसको। लेकिन भगवान वह यहां से दिखता है, तो अप्राकृत भगवान की कृपा से अप्राकृत ध्रुव लोक दिख रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? जब भगवान कह रहे हैं कि नहीं नष्ट होता है, तो हम अपनी बुद्धि क्यों लगाएंगे? तो सचमुच नष्ट नहीं होता होगा। प्राकृत जगत में तो क्षीरोदक भी है, तो इसका मतलब कि वो नष्ट थोड़े हो जाता है। प्राकृत जगत में तो वैकुंठ का एक ऑफिस भी है यहाँ, जहां से भगवान इस जगत को देखते हैं। तो ये प्राकृत जगत वाला वैकुंठ कहते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या, वो नष्ट नहीं होता है परलय में, वो क्षीरोदक नष्ट नहीं होता है। बहुत चीज ऐसे है जो भगवान का चीज अप्राकृत वस्तु से ही प्राकृत जगत चलता है, ऐसा नहीं है। तो जड़ पदार्थ है, इसमें भगवान अप्राकृत जीवों को भेजे हैं, अप्राकृत जीव इस प्राकृत जगत में है ना, तो जीवों का नाश थोड़े होता है। महाप्रलय में भी जीवों का नाश नहीं होता है। तो इनका कहना है कि उनको समेट लिया जाता है एक जगह, तो ऐसे ध्रुव लोग को भी समेटा जाता है क्या? नष्ट नहीं होता है।
जैसे ये कहते हैं मेरा भुत्ता भुत्ता प्रलीयते, सृष्टि होता है और
हाँ,
कभी मैनिफेस्ट होता है, कभी प्रकट होता है, अप्रकट होता है। तो ये भी जो छोटा अवस्था में रहता है और बाद में दिखाई देता है, या वैकुंठ को चला जाता है, कहने का मतलब ये?
हाँ, वो नष्ट नहीं होता। जैसे एक उदाहरण और भी दिया गया है कि जैसे सूर्य इस जगत में उदित होते हैं, दिखते हैं, रात्रि के समय ओझल हो जाते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य नष्ट हो जाते हैं और फिर जन्म होता है। वैसे ही भगवान के विषय में या प्राकृत वस्तुओं के विषय में वही उदाहरण है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। कभी सूर्योदय के द्वारा सूर्य प्रकट हो जाते हैं, सूर्यास्त के बाद अस्त हो जाते हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति बनी रहती है, ज्यों के त्यों। कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते। वही उसी प्रकार अजन्मा भगवान कभी आते हैं, कभी नहीं आते। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान जन्म लेते हैं। वैसे जीव भी अजन्मा है, लेकिन जीव इतना लिमिटेड है ना कि उसका उसकी शक्ति लिमिटेड है, इसलिए उसको ऐसे कह दिया जाता है मृत्यु। मृत्यु के ग्रास जीव नहीं बनता है, शरीर बनता है, प्रकट अप्रकट होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। और हाँ, इनको दे दीजिए।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण।
देवता लोग स्वर्ग लोक में रहते हैं ना।
हाँ।
और स्वर्ग लोक भी एक भौतिक जगत है।
हाँ।
देवताओं ने भगवान का फेस टू फेस दर्शन पाया था।
हाँ।
इसका मतलब देवताओं सभी प्रकृति का तीन गुणों से परे हैं क्या?
नहीं नहीं, ये तीनों गुणों से परे, हमारे जैसे मनुष्य भी भगवान के फेस टू फेस दर्शन कर सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज भगवान के भजन किए, प्रार्थना किए, तो भगवान उनके सामने आए तो उन दर्शन किए। वैसे देवता लोग फेस टू फेस जैसे हम रोज मिलते हैं वैसे नहीं मिलते थे, जब जरूरत पड़ने पर भगवान को पुकारते हैं तब आते हैं। ऐसे भगवान उपेंद्र के रूप में देवताओं के साथ हैं, वो एक दूसरा स्थिति है। भगवान भी देवता बनकर आए, अदिति के पुत्र के रूप में आए तो उपेंद्र हैं, तो उपेंद्र के रूप में साथ रहते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पर स्तुति करने के बाद भगवान प्रकट हुए हैं, तो जैसे देवताओं के सामने भगवान प्रकट हुए, वैसे हमारे सामने भी प्रकट हो सकते हैं। तो इसका मतलब फेस टू फेस हम भी देख सकते हैं। ऐसी स्थिति भी आती है कि केवल देवताओं के सामने नहीं, मनुष्यों के सामने भी आते हैं।
इधर माइक दे।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
कल गुरु पूर्णिमा थी
और आपने अभी बताया कि राजा बलि से जब ही तीन कद मांगा वामन भगवान ने, तो राजा बलि के बाजू में उनके गुरु थे, उनके गुरु ने उनको बताया जो ये मांग रहे हैं उनको मत दो। तो उन्होंने गुरु का पालन नहीं किया, तो ये क्या सही था या नहीं था?
अच्छा, अब ध्यान से सुनिए। वास्तव में शुक्राचार्य जी मना नहीं कर रहे थे, मना अगर करते और बलि उनकी बात नहीं मानते तो जो आप पूरी कथा ध्यान से सुनेंगे, भागवत से पढ़ेंगे, तो बलि महाराज को ये इंगित करना चाहते थे। पुरोहित थे, पुरोहित का अर्थ है पुरोहित, आगे आगे चलकर हित करना, इस मुहूर्त में इस क्षण में काम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो अब दान भी देने जा रहे हैं तो कहीं बलि भूल न कर ले, जानबूझकर दे, समझ ले कि नहीं दे सकता है, फिर भी इसकी स्थिति क्या रह सकती है, परीक्षा के लिए कहे, जानते हो ये साक्षात भगवान है, विष्णु अव्यय है, ये कश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लेकर देवताओं के काम साधने के लिए आए हैं, तुम इनको दे नहीं पाओगे? ऐसा नहीं है कि तुम एक साधारण भिखमंगा ब्राह्मण समझकर देने के लिए तैयार हो गया, कन्फर्म हो जाओ ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, दो डेग में सब कुछ ले लेंगे, पहले कह दिए शुक्राचार्य जी, तीसरा के लिए तुम्हारे पास जमीन नहीं रहेगा। इस स्थिति में बेटा जानते हो क्या होगा, नरक जाना पड़ेगा, ये भी कहे शुक्राचार्य जी, तो तुम देकर भी नरक जाओगे, अब सोच लो देना उचित है कि नहीं। अपनी वृत्ति बचा लेना ही बुद्धिमानी है, देने के बाद भी रिजल्ट होगा कि तुमको नरक जाना पड़ेगा, अब सोचो क्या करना चाहिए। तो कहे ठीक है गुरुदेव, मैं प्रहलादी हूं, आप भागवत पढ़ेंगे तब, कहते हैं मैं प्रहलादी हूं, आप जो नरक का डर मुझे दिखा रहे हैं कि नरक चला जाऊंगा, तो दुखों का सामना जैसे प्रहलाद महाराज ने किया वैसे मैं भी कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं इनसे नहीं डरता, मुझको कोई भय नहीं है, और यहां तक कह दिए कि पितामहो में भवदीय सम्मत प्रहलाद आविष्कृत नहीं, ये नहीं यहां कह रहे हैं। हाँ, सत्यम भगवता प्रोक्तम, हे भगवान आप सत्य कह रहे हैं, धर्मो यम गृह में यधिनाम, आपने जिन विषयों का प्रवचन किया और घर गृहस्थी में जिनकी बुद्धि फंसी है उनके लिए तो फर्स्ट क्लास, आपका प्रवचन गृह मेधियों के लिए फर्स्ट क्लास है, जिनको अर्थम कामम जसो वृतिम जो न बाधेत करिचित, जो अपने अर्थ को, धन को, अपनी कामनाओं को, अपने जस को, अपनी जीविका को बचाने की जिनकी बुद्धि लगी है उनके लिए आपका प्रवचन द बेस्ट क्लास है। लेकिन स च अहम बीत लोभे न, मैं धन के लोभ से प्रत्याचक्षे कथम दिजा, इस ब्राह्मण के साथ धोखा नहीं कर सकता, क्यों? प्रतिश्रुत ददामिति, मैं कह दिया दूंगा तो दूंगा, प्रहलादी मैं प्रहलाद का फॉलोअर हूं, कृतो जथा, आप जो भय दिखा रहे हैं कि न यह सत्यात परो धर्म, आप कह रहे हैं नरक चला जला जाओगे, तो ना हम विभेषी निर्यान, मैं भय नरक से भय नहीं करता, मैं दुखों से भय नहीं करता, प्रहलाद सारे दुख को सह लिए, हिरण्यकश्यपु के दिए हुए दुख को, मैं उनका फॉलोअर हूं, उनका शिष्य हूं, दुखों को देख लूंगा, लेकिन इस ब्राह्मण को विप्रलंभनात जो है, ब्राह्मण को धोखा देना ही नहीं कर सकता। और ये धन की बात कर रहे हैं, गुरु महाराज से बात कर रहे हैं बलि महाराज, ये धन ऐसा भी इतिहास साक्षी है कि श्रेय कुर्वंती भूतानाम साधो दुस्तेजा सुभी दध्यंग शिवी प्रभृतय को विकल्पो धरा दिशु, ऐसे ऐसे इतिहास में महाविभूति हुए हैं जो अपना शरीर तक दान कर दिए, जिसके उदाहरण है दधीची और शिवी महाराज, मैं तो पृथ्वी दे रहा हूं, मेरा शरीर बरकरार है, अभी कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं दूंगा, तो इतना जब कह रहे हैं और देने के लिए संकल्प तैयार हो गए, तब शुक्राचार्य जी कहते हैं मूर्ख कहीं का, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन होना तो पहले ही सिद्ध है, कह रहे हैं कि सब कुछ ले लेंगे, कौन श्राप है, ये श्राप है, ये तो भीतर की खुशी है। चाहते तो कह देते तुम भस्म हो जाओ, तुम जल जाओ, तुम नरक में चले जाओ, तुम्हारा धन छीन लिया जाएगा, ये तो पहले क्लियर है। तो उनको कह रहे हैं। और यहाँ प्रहलाद महाराज प्रशंसा कर, इनका बलि महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं शुक्राचार्य जी। जब भगवान कहे कि अपने शिष्य का जग पूरा कर लीजिए, अधूरा रह गया, जब उनको भेज दिए सूतल लोग, तब कहते हैं कि आप इसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि पूरा कर लेंगे तब आगे वाले भविष्य में इंद्र बनेगा। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं अभी पूरा करना बाकी है। कहते हैं हाँ, इसको पूरा कर लो। कहते हैं यजमान नहीं है तो यज्ञ कैसे पूरा होगा। तो कहते हैं कि ब्रह्म दृष्टम समम भवेत, ब्राह्मणों की दृष्टि से संकल्प से भी पूरा हो जाता। तब कहते हैं प्रभु कुतस्तत् कर्म वैषम्य, इस कर्म में क्या कमी रह गई। जस्य कर्मेश्वरो भवान, सारे कर्मों के ईश्वर जहां उपस्थित है, और यज्ञेशो यज्ञ पुरुष, जितना भी यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ के कंट्रोलर यज्ञ पुरुष सर्वभावेन पूजित, सभी प्रकार से हमारे शिष्य के द्वारा पूजित है और गदगद है, खुश है यज्ञेश, फिर भी बाकी है। और जहां जिनके नाम का उच्चारण करने पर यज्ञ की कमियां पूरी हो जाती है, मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालार वस्तुना सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव, आपके केवल नाम कीर्तन करने से यज्ञ की कमी पूरा हो जाता है। मंत्र का उच्चारण, घी के जगह पर डालडा आ गया, सब पूरा हो जाएगा। लेकिन और वही यज्ञ संतुष्ट है, फिर भी कह रहे हैं कमी है, कमी नहीं है, मैं समझ रहा हूं। तथापि बदतो भूमन, हे सर्वसमर्थ भगवान, आप यदि कह रहे हैं तो मैं करूंगा, करिष्याम अनुशासनम, मैं आपके अनुशासन का पालन करूंगा। क्यों करेंगे जब कोई कमी ही नहीं है। तो देखिए टॉप सिद्धांत बतला रहे हैं बलि शुक्राचार्य जी। यस्येह परमं पुंसा यत् तवज्ञानुपालनम, जीव का सर्वश्रेष्ठ हित, सबसे बड़ा कल्याण, जीवन का परम श्रेय उसी में है कि आपकी आज्ञा पालन करें। इतने बड़े वैष्णव है शुक्राचार्य जी। तो ऐसे बड़े वैष्णव, एक वैष्णव दान कर रहा है तो उनको दिक्कत थोड़े हो रहा है, लेकिन उसको कसौटी पर कस रहे हैं कि देगा कि नहीं, जब देख लेते हैं सब कुछ चला जाएगा, इसको पता चल जाए, हो सकता है अनजान में दे रहा हो कि तीन देख देंगे सब कुछ बचा रहेगा, तो इस फेरे में दे रहा है, दाता बन रहा है, बतला दे इसके बाद क्या करता है, यह देखना चाहते थे शुक्राचार्य जी। तो देख लिए कि दे दिया, तो कहते हैं वाह कमाल कर लिया बेटा। शुक्राचार्य जी परम प्रसन्न है, खुश है। ऐसा नहीं है कि नाराज होकर श्राप दिए हैं, नाराज होकर श्राप देते तो कुछ और श्राप दे सकते थे।
एक और बात है, आपने महारानी कुंती के बारे में कुछ बताया। अब जब युद्ध खत्म हो गया, पांडव युद्ध जीत चुके थे, भगवान कृष्ण कुंती जी से के पास सामने जाते हैं और पूछते हैं कि अब क्या चाहिए तुम्हें, अब तो सब जीत चुके हो। तो मुझे कुछ याद है, कुछ शब्द उन्होंने कहा था कि मुझे दुख चाहिए। तो कहने का अर्थ यहां पे कुंती का ये था कि सुख में तो हम वापस से मटेरियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं, ये जो राज जो मिल गया वापस से मटेरियल वर्ल्ड में आ जाएंगे, लेकिन जब दुख में रहेंगे तो भगवान साथ में रहेगा, भगवान का साथ रहेगा। इस पर कुछ आप बताना चाहेंगे।
हाँ, वो स्पष्ट कहती है विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे परम हितैषी जगत गुरु, आप मेरे दुख को परमानेंट कर दीजिए। विपदा संतु, विपद तो आया, कई बार आया, लेकिन वो टेम्पोररी आया और गया, तो शश्वत परमानेंट कर दो। क्यों? तो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, इससे क्या होगा कि आप दुख मिटाने के लिए उपस्थित रहोगे। ये प्रमाण है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो आप साड़ी बनकर आ गए, जब दुर्वासा का विपद घर आया तो वहां भी वन में उपस्थित हो गए। और जब पांडवों के युद्ध का सामना करना पड़ा तो सारथी बनकर आ गए। तो विपत्तियों में जब हमारे पास विपत्तियां होती हैं तो आप साथ रहते हो, तो इससे क्या होगा कि भवतो दर्शनम यथात, आपका दर्शन होगा और वह दर्शन अपुनर्भव दर्शनात। उस दर्शन की विशेषता क्या है कि आपके दर्शन जब प्राप्त होता है तो पुनर्भव का दर्शन नहीं होता, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। तो बड़े बड़े विचारकों का विचार है, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख को जो क्षण क्षण नाम रटाए, एक कबीर दास जी कहते हैं। तो कहते हैं कि दुख के सुख के माथे सील पड़े, वज्रपात हो जाए उस सुख पर जो नाम हृदय से जाए। सुख के उन्मत्तता में हम भगवान के नाम को भूल जाते हैं। ये भी कह रही है, जन्मेश्वर सुत श्री भी रेधा मानव मद पुमान नैवार्थत विधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। धन ऐश्वर्य में पढ़ने वाले तो आपका नाम ही नहीं लेते, इसलिए तो। और बलिहारी व दुख को जो क्षण क्षण नाम रटाए, एक विद्वान कहा है विपदा नहीं व विपदा, संपदो नहीं व संपदा, विपदा विस्मरणम विष्णु संपदो नारायण स्मृति। कहते हैं संसार की विपत्तियां विपत्तियां नहीं है, संसार का सुख सुख नहीं है, विपदा नहीं व विपदा, जो विपत्तियां दिखाई दे रहे हैं विपत्ति नहीं है, संपदो नहीं व संपदा, जो संपत्तियां दिखाई दे रहे हैं संपत्ति नहीं है। तो संपत्ति और विपत्ति है क्या? तो विपदो विस्मरणम विष्णु, जिन कारणों से भगवान भूल जाए वही विपत्ति है, और संपदो नारायण स्मृति, संपत्ति तो वही है जिसमें उनका स्मृति बनी रहे। तो चाहे जो भी कारण हो, संपत्ति इसी को लक्ष्य करके कुंती महारानी कहती हैं कि हो सकता है विपत्ति में आपका स्मरण न हो, अरे संपत्ति में न स्मरण हो, विपत्तियां में तो स्मरण बना ही रहता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, ठीक है।
धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। आपके बिना तो पूरा ही नहीं होगा, जल्दी कीजिए।
हरे कृष्ण।
अभी फाइनल सिग्नल है। हाँ,
बोलिए। मैं एक इसमें कमेंट करना चाहता हूँ।
हाँ, कीजिए।
श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाशय बताते हैं, देवर्षि भूतात्म नाम पितृनाम नायब्रजदाजन सर्वात्मा शरणम शरणम गतो मुकुंद परिहृत कर्तम। 11वां स्कंध का 5वां अध्याय के श्लोक में बताया है कि जो व्यक्ति प्रभु के शरण में आए हैं उनका देवर्षि भूतापत स्वकेजन पितृनाम पितृलोक और राजा इन सबके प्रति उनका कर्तव्य है, वो अपने आप पूर्ण हो जाता है। गतो मुकुंदम शरणम परिहृत कर्तम, वो मुकुंद के जो शरण में आए हैं उनका किसी के प्रति कोई कर्तव्य अवशेष नहीं रहता है, और इस प्रभु के सेवा में जो कुछ बाधा आते हैं तो ऐसे व्यक्ति का त्याग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप पिता का त्याग प्रहलाद महाराज किए, माँ का त्याग कैकेयी का त्याग भरत जी किए, और शुक्राचार्य सलाह देने पर भी बलि महाराज उनके अनुसार कार्य नहीं किए, और भाई का त्याग विभीषण रावण का त्याग किए हैं। तो प्रभु के सेवा अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रभु के सेवा में अनुकूल हो उसे स्वीकार किया जा सकता है, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग किया जा सकता है।
ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, जय श्रील प्रभुपाद।